सभी भक्तों का स्वागत है इस नव वर्ष में हमारे गीतामृत कार्यक्रम में। सर्वप्रथम सभी हमारे उपस्थित गीतामृत के पार्टिसिपेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर, इस नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। और हमारी शुभकामनाएं यही हैं कि हम वर्ष उपरांत वर्ष इसी प्रकार से गीतामृत के इस समुद्र में, गीता के इस अमृतमय समुद्र में गोते खाते रहें और इसी प्रकार से हमारा जीवन पूरा बीत जाए और नित्य काल तक हम भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है भगवद गीता की, उसी को अपना प्रेरणा बनाकर अपने जीवन को चलाएं। हरे कृष्णा। तो पिछले साल हमने तीसरा अध्याय संपन्न किया और हम बधाई देना चाहते हैं, ये पूरा तीसरा अध्याय और पहला दूसरा अध्याय, जो भक्त पहले अध्याय से कौन है जो यहां पर उपस्थित है पहले अध्याय से, तो आप लोगों को बधाई कि पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक आपकी अटेंडेंस पक्की रही। और अब आज से चौथा अध्याय हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। श्रील प्रभुपाद ने इसका शीर्षक दिया है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो जैसे कि हमने तीसरे अध्याय के अंतिम सत्र में सुना फलस्तुति, तीसरे अध्याय की फलस्तुति, और उस फलस्तुति में यह बताया गया कि भगवद गीता का कोई भी अध्याय हमें किस प्रकार से सुनना है, भगवद गीता का श्रवण हमें किस प्रकार से करना है। तो क्योंकि अब हम ये चौथा अध्याय प्रारंभ करने जाने वाले हैं, तो चौथे अध्याय के प्रारंभ से ही हम पहले जान लें कि हमें ये चौथा अध्याय इसका श्रवण कैसा करना है। तो वो एक स्लाइड हमने पिछले हमारे सेटिंग में ली थी, फोर टाइप्स ऑफ हियरिंग, इसको हम फिर से लेंगे ताकि जो श्रवण इस साल और हर अध्याय का हर साल हम जो श्रवण करेंगे तो वो किस प्रकार का श्रवण होना चाहिए। The first type of hearing mentioned in our scriptures, incidental hearing. Incidental hearing, अर्थात उठते बैठते यहां वहां अकस्मात हमने कुछ श्रवण कर लिया। Incidental का अर्थ है अकस्मात, हमने कोई विशेष प्रयोजन नहीं किया कुछ भगवद गीता का श्रवण करने के लिए या शास्त्र का श्रवण करने के लिए। ऐसे ही टीवी ऑन किया, आस्था चैनल चल रहा था, गलती से बोलना जरूरी है, कुछ सुन लिया उसमें से, कुछ शास्त्रों की बातें सुन ली और बोर लगा तो चैनल चेंज कर दिया, और चैनल चेंज नहीं हो रहा है, कई बार बैटरी कम है रिमोट में, चैनल चेंज नहीं हो रहा है, तो एक दो मिनट ज्यादा सुन लिया, उसको भी बोलते हैं इंसिडेंटल हियरिंग। उसके पश्चात पर्पसफुल हियरिंग, कि टीवी बंद करकर हम यहां आते हैं, इसको क्या कहते हैं पर्पसफुल हियरिंग, कि अब हम समय निकालकर, गाड़ी निकालकर, अपने आप को निकालकर और बाकी चीजों को रखकर यहां आते हैं, इसको कहते हैं पर्पसफुल हियरिंग, कि हमने ठान लिया है कि हां कुछ हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे आज। इससे ऊंचा श्रवण, इसको कहते हैं मेडिटेटिव हियरिंग, कि जो हमने श्रवण किया अब उस पर मनन करना, उसका स्मरण करना, उसके विषय में सोच विचार करना, और सबसे उच्च श्रेणी का श्रवण है एप्लीकेटिव हियरिंग, कि जो हमने पर्पसफुली सुना, जिसके ऊपर मनन किया, मेडिटेट किया, अब उसको अप्लाई, इसको कहते हैं एप्लीकेटिव हियरिंग। अब देखिए हमारे शास्त्रों में ये चार प्रकार के श्रवण बताए हैं, इसको अंग्रेजी टर्म्स मैंने ही दिए हैं, तो ये चार प्रकार के श्रवण बताए हैं। परंतु कलयुग में इस एप्लीकेटिव हियरिंग में एक सब उसको कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार का हियरिंग लोग करते हैं, उसको कहते हैं सिलेक्टिव हियरिंग, और उसको अप्लाई भी करते हैं। तो शास्त्रों में से वो कुछ, उसको यदि हम हिंदी में अनुवाद करें, चुनिंदा श्रवण, सिलेक्टिव हियरिंग या सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग होता है कि हमें जो सुनना है वही सुनेंगे, आप जो जो चाहे बोल लो, जितने ग्रंथ कोट कर लो, हमें जो सुनना है वही हम उसमें से कट पेस्ट करके हमारे लिए निकालेंगे, उसको कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। और उसमें एप्लीकेटिव भी आ सकता है कि उसको अप्लाई भी करते हैं परंतु सिलेक्टिव तरीके से अप्लाई करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से एप्लीकेटिव हियरिंग नहीं होता। एक उदाहरण से, एक कहानी से आपको समझाएंगे कि ये सिलेक्टिव एप्लीकेटिव हियरिंग क्या हो जाता है कलयुग में। ये कलयुग की विशेषता है, कलयुग की स्पेशलिटी है। तो बचपन में हमको ये प्रसिद्ध कहानी सुनाई गई थी, तीन चोर, प्रसिद्ध विख्यात चोर। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों हम हर समय केवल किसी की धन संपत्ति चुराते हैं, क्योंकि धन संपत्ति चुराने के पश्चात फिर खर्चा करने के पश्चात फिर उसका उपभोग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी वस्तु चुराएं कि तुरंत उसका उपभोग कर सकें, कुछ खाने की वस्तु जैसे कि। तो उन्होंने सोचा ठीक है, इस बार हम किसी मिठाई वाले पर धावा बोलते हैं। तो हलवाई की दुकान, उन्होंने एक मटका भरा हुआ खीर का चुरा लिया और जंगल में चले गए। और अब जैसे कि वो हर समय क्या करते थे कि मिल बांटकर जो भी चोरी का माल है, मिल बांटकर उसका उपभोग करेंगे। तो अब खीर का घड़ा चुराया है तो मिल बांटकर इसे खाएंगे। तो जब घड़ा खोलकर देखा तो खीर बहुत थोड़ी सी बची हुई थी, तो ये तो फ्लॉप शो हो गया कि इतनी मेहनत कर चोरी की, खीर इतनी सी बची, इतनी सी निकली। तब उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम तीनों आज रात को सो जाते हैं और इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में ठंडा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से ठंडी हुई खीर और ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, और कल सुबह हम में से कोई एक ही केवल इस खीर को खाएगा। कौन होगा वो जिसको सबसे अच्छा सपना आया रात को? आपने शायद ये कहानी सुनी होगी बचपन में। तो तीनों सो गए, घड़े को रख दिया चंद्रमा की रोशनी में ठंडा होने के लिए, और सुबह जब तीनों उठे तो अब कौन इसका भागीदार है, कौन इस खीर को खाएगा, कौन है वो चोजन, चुनिंदा व्यक्ति? तो सबसे पहले चोर ने कहा, जो सबसे सीनियर था तीनों में, बाकी दो का सरदार था, तो उसने कहा कि जो मुझे सपना आया है, मैं सुना दूं तो फिर मायूस हो जाओगे, क्योंकि फिर खीर तो मुझे ही मिलनी है, इतना अच्छा सपना मुझे आया है। बोलो बोलो भाई, क्या सपना है? मैं सपने में ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्म लोक में था। इस पूरे भौतिक संसार का जो सबसे ऊंचा लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, तो ब्रह्मा जी के लोक में मैं था और ब्रह्मा जी मुझे पर्सनली ब्रह्म लोक दिखा रहे थे, से अच्छा क्या हो सके? तो ठीक है, अब आप लोग यहां वहां देख लो क्या नाश्ता करना मैं खाता हूं। अरे 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 दूसरा बोला रुकिए रुकिए मेरा सुन, तुम तो ब्रह्मलोक में थे, मैं उनसे ऊंचा जो लोक है शिवलोक में था और मुझे शिवजी हाथ पकड़कर पूरा दिखा रहे थे शिवलोक, तुम क्या अपने सपने के बारे में बता रहे हो? तो तुम ढूंढ लो तुम्हारा नाश्ता सुबह का, ये खीर तो मेरी रही अब। तो अब दोनों तीसरे चोर की ओर देख रहे हैं कि भाई तुम भी बता दो। वो बेचारा एकदम मुंह लटका हुआ उसका, तो दोनों को लगा कि भाई इसको तो पता नहीं कोई बहुत भयावह सपना आया होगा, नाइट में ऐसे मुंह लटका हुआ। फिर भी बोल दो भाई, खाते समय हमको, या बीच वाला बोला कि मुझे आनंद आएगा। तो तीसरा बोला अब क्या बताओ मेरे सपने के बारे में? नहीं 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 बताओ बताओ क्या बोलो, खाते समय सुनूंगा मैं। ले क्या तुम खाओगे क्या सपना सुनोगे? ना नहीं बोलो तो। तो उसने कहा ठीक है, अब इतना अनुरोध कर रहे हैं तो बोल देते हैं। अब रात में आप लोग तो सोए थे, हनुमान जी मेरे सपने में आए और वो भी अपनी गदा लेकर, और गदा दिखाते हुए हनुमान जी क्रोध भरी आंखों से मुझे कहे बेटा उठ ये खीर खा। और मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा था कि आप लोग है ना आपके सपनों में होंगे, अभी क्या मैं अकेले खीर खा लूं? तो हनुमान जी तो भाई मेरे केस के ऊपर थे, उन्होंने तो गदा और घुमाई और कहा कि खीर खाता है कि नहीं खाता है। तो बाकी दो बोले तो फिर क्या हुआ आगे? अब होना क्या था? आपके सामने यदि हनुमान जी आ जाएं, गदा लेकर घुमा रहे हैं और क्रोध भरी आंखों से आपको कह रहे हैं कि उठ के खीर खा, आप क्या करो? तूने खीर खा ली? तो कहा अबे हमें तो उठाता। तो उसने कहा कैसे उठाता, आप तो ब्रह्मलोक में थे, आप शिवलोक में थे। तो अब हनुमान जी मेरे सर पर कहां ब्रह्मलोक शिवलोक में जाने का समय कहां था? तो जब ढक्कन उठाकर देखा तो खीर खाई हुई थी। इसको कहते हैं एप्लीकेटिव सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग को अप्लाई किया। तो कई बार हम भी शास्त्रों का श्रवण उस प्रकार से करते हैं कि हमें कौन सा भगवद गीता का श्लोक सबसे पसंद है। जैसे ये एक पास टाइम श्रील प्रभुपाद का, एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे अनुसार भगवद गीता जैसा ग्रंथ नहीं। तो थोड़ा दिखावटी तरीके से बोल रहा था, तो प्रभुपाद समझ गए। प्रभुपाद ने कहा अच्छा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि भगवद गीता के अंत में जो भगवान ने अर्जुन को एक श्लोक कहा है, वो श्लोक जो मैंने पढ़ा, उसने वही पढ़ा था खाली पूरे गीता। कौन सा श्लोक भाई? पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा यथेच्छसि तथा कुरु, अब हे अर्जुन जो तुम्हारी इच्छा हो करो। तो अब आप समझ गए कि इसके कहने का आशय क्या था, कि पूरी गीता श्रवण करने के बाद जो मन में आए वो करो, ये भगवद गीता का सार है। इसको कहते हैं चुनिंदा श्रवण। तो यहां पर अब हम चौथा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। तो हम यही हमारा प्रयोजन रहेगा कि हमारा श्रवण इस चौथे अध्याय का और पूरी भगवद गीता का किस प्रकार का रहे, पर्पसफुल मेडिटेटिव एप्लीकेटिव हियरिंग। अर्थात आपको हर बुधवार आना है, ठीक है, तब जाकर वो पर्पसफुल बनेगा। नहीं तो फिर केवल अकस्मात, जैसे ईद का चांद, उस प्रकार से नहीं। तो भगवद गीता के चौथे अध्याय की शुरुआत होती है भगवान श्री भगवान उवाच इन शब्दों से। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये जो भगवद गीता का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं या ये अविनाशी योग मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इस भगवद गीता के ज्ञान को जो कि अव्यय है, मैंने सर्वप्रथम विवस्वते विवस्वान अर्थात सूर्य देव इनको दिया। उन्होंने तत्पश्चात उनके पुत्र मनु वैवस्वत मनु को दिया। मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत अर्थात मनु ने इक्ष्वाकु अपने पुत्र को दिया। तो इसका पूरा अनुवाद श्री प्रभुपाद का इस प्रकार से है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा है इस परंपरा की लिस्ट से। परंपरा में ये जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन से पहले किन किन को दिया, भगवान थोड़ा सा उसका एक ट्रेलर अर्जुन को इस श्लोक में दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। चौथे अध्याय की शुरुआत, इस अध्याय का जो शीर्षक है दिव्य ज्ञान, इस अध्याय की शुरुआत इन श्लोकों से क्यों हुई। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, चौथे एवं तीसरे अध्याय का संबंध क्या है। श्री भगवान वाच शब्दों की व्याख्या, भगवान द्वारा सूर्यदेव को गीता का उपदेश, इसका महत्व क्या है। योग एवं अव्यय शब्द भगवान ने आज के श्लोक में इस्तेमाल किए हैं तो इसकी व्याख्या हम करेंगे। यही ज्ञान सूर्यदेव अर्थात विवस्वान, विवस्वान सूर्यदेव का नाम है, सूर्यदेव जो कि पद है और उस पद को इस समय जो धारण किए हैं उनका नाम है विवस्वान। तो यही ज्ञान विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने गीता का यही ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और अंत में भगवान ने आज के श्लोक में परंपरा का प्रारंभ सूर्यदेव विवस्वान से क्यों बतलाया है। तो ये हमारे आज के चर्चा के विषय रहेंगे। तो सर्वप्रथम तीसरे एवं चौथे अध्याय में संबंध क्या है, तो हम पूछना चाहेंगे उपस्थित भक्तों से, तीसरा अध्याय क्या शीर्षक था, कर्मयोग, और तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया था अर्जुन को, जो अंतिम सेक्शन, हाँ, काम और क्रोध, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के वजह से काम वासना और क्रोध कैसे किसी व्यक्ति को जो सही राह पर चल रहा है उसको पथभ्रष्ट करते हैं। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में अंतिम श्लोकों में कामवासना और क्रोध के विषय में अर्जुन को समझाया। क्यों क्यों? कर्मयोग शीर्षक है। अर्जुन ने सवाल किया था, क्यों किया था? क्योंकि वहां पर तो काम वासना, अर्जुन अचानक काम वासना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं भाई? उधर तो सारे पुरुष खड़े थे, 64 करोड़ जो योद्धा वहां पर, सारे पुरुष खड़े थे, अचानक अर्जुन काम वासना के विषय में क्यों पूछने लगे? ठीक है, घबराइए मत, हम बताते हैं आपको। तो अध्याय का प्रारंभ, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, पहले हम दोनों अध्याय के प्रारंभ को देखते हैं और फिर ये जो अंत हुआ है तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय की शुरुआत उसको देखते हैं। तो तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ अर्जुन के प्रश्न से। तो ये एक स्वाभाविक नीति हुई कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा तीसरे अध्याय के प्रारंभ में, तो चौथा अध्याय शुरू हुआ है भगवान के उत्तर से। हालांकि भगवान ने उत्तर पहले ही प्रारंभ कर दिया था, और ये बात हमें समझना है कि ये विभाजन जो है व्यासदेव जी ने हमें प्रस्तुत कर कर दिया है। भगवान ऐसा नहीं कि अर्जुन को कहे ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, तीसरा अध्याय संपन्न हुआ, अब अर्जुन चौथा अध्याय शुरू करते। नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान तो बोले जा रहे थे। तो ये विभाजन हमारे जो व्यासदेव जी और हमारे गुरु वर्ग हैं उन्होंने कर कर दिया। अब जो हमने ये प्रश्न पूछा कि तीसरा और चौथा अध्याय, तीसरे अध्याय का अंत और चौथे अध्याय का प्रारंभ, तो काम वासना, तीसरे अध्याय का अंत काम वासना का विवरण करते हुए भगवान ने किया। क्यों? क्योंकि काम वासना दिव्य ज्ञान के अभाव की वजह से किसी व्यक्ति में आती है। लस्ट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। Absence of transcendental knowledge gives rise to lust. तो ये सूक्ष्म मुद्दा यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ये सूक्ष्म मुद्दा भगवान ने तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में इसके बारे में चर्चा की। इसलिए चौथे अध्याय का प्रारंभ भगवान वहीं से कर रहे हैं। मतलब भगवान तो एक के बाद एक श्लोक बोले जा रहे हैं, तो हमारे लिए अब चौथे अध्याय का प्रारंभ हम यदि समझना चाहें तीसरे अध्याय के अंत से, तो उस काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा शस्त्र चाहिए? दिव्य ज्ञान। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक श्रील प्रभुपाद ने दिव्य ज्ञान दिया है। और इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत जो आज का श्लोक पहला श्लोक है, इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत भगवान ने कहां से की, किससे की, ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है कि तीसरे अध्याय की शुरुआत चौथे अध्याय की शुरुआत में संबंध क्या है, तीसरे अध्याय का अंत चौथे अध्याय का प्रारंभ इन दोनों में संबंध क्या है। अब कुछ और कारण काफी इसमें हमारे अलग अलग जो टीकाकार हैं उनके उत्प्रेक्षा है, तो कुछ और कारण चौथे अध्याय का जो शुरुआत हुआ है उसके। अब ये एक कारण बलदेव विद्याभूषण देते हैं कि there was an awkward silence। ये वर्ड आपने कभी सुना है, ऑकवर्ड साइलेंस. कभी कभी होता है ना, हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लेते हैं, नहीं मिलना होता है, लेकिन सामने आ गया, अब क्या बोले, आ गया, नहीं करना है हैप्पी न्यू ईयर इसको, अब सामने आ गया, हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं करना है, कुछ अपशब्द भी नहीं बोलना है, वो भी जानता है, वो भी चुप, आप भी चुप. क्यों चुप हैं? कि जैसे समय बीते तो अलग अलग हो जाएं जल्दी से जल्दी, उसको बोलते हैं ऑकवर्ड साइलेंस. अब यहां पर आपका प्रश्न होगा कि भगवान कृष्ण में और अर्जुन में ऑकवर्ड साइलेंस कैसे हो सकता है? तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि अर्जुन जो कि युद्ध नहीं करना चाहते थे, उसी के इर्द गिर्द उनके प्रश्न थे, उनके जितने प्रश्न हैं प्रथम अध्याय से लेकर अब तक, कि कैसे उन्हें युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही. तो भगवान ने अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाया, प्रोत्साहित किया कि गांडीव उठाकर युद्ध करो. तो अब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था कि क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो, तो भगवान ने वो जो प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए बताया कि घोर कर्म क्या होता है और निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या, ये सब कुछ समझाया. फिर अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था अथ केन प्रयुक्तो यहम, कि काम वासना कैसे किसी घोर कर्म में सही व्यक्ति को लगा देती है, तो भगवान ने उसके भी शंका का सब निवारण कर दिया. अर्जुन ने जो जो उसे संबंधित प्रश्न पूछे थे भगवान ने सबका निवारण कर दिया. अब अर्जुन चुप हो गए, उठा नहीं रहे गांडीव. भगवान देख रहे हैं, हो गया ना आंसर, हो अब उठाओ. तो अर्जुन उठाना नहीं चाह रहे, क्यों? आगे अब कुछ प्रश्न नहीं, आंसर तो दे दिया भगवान ने संक्षिप्त रूप में, अब कुछ प्रश्न नहीं, परंतु फिर भी अर्जुन गांडीव क्यों नहीं उठाना चाह रहे? एनी गेस? कुछ समय के लिए साइलेंस हो गया, भगवान देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों भाई? वो भगवान इस अपेक्षा में नहीं थे कि 18 अध्याय सुनाना है अभी पूरे. भगवान बोलते हो गया ना, अभी उठाओ. अर्जुन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अर्जुन इतने प्रभावित हो गए भगवान के उत्तरों से, भगवान के जवाब से, कि अर्जुन अब और सुनना चाहते थे. तो ये ऑकवर्ड साइलेंस खाली वर्ड यूज किया गया है, परंतु अर्जुन के अंदर वो भाव था, आप रुक क्यों गए और सुनाइए. और भगवान देखना चाहते थे कि क्या अर्जुन के अंदर, तो साइलेंस बीच में, पॉज बीच में क्यों आया, भगवान रुककर देखना चाहते थे क्या अर्जुन सुनना चाह रहा है या बोर हो रहा है. इसलिए कई बार स्पीकर बीच में पॉज लेते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो फिर आगे सुनाते हैं. फिर तो भगवान अर्जुन के मुखमंडल को देखकर, हालांकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान जान गए कि अर्जुन को और सुनना है, अर्जुन को लत लग गई गीता की, लत लग गई, अच्छी बात है ना. तो वहां पर भगवान और अर्जुन के बीच में ये बहुत ही सुंदर आदान प्रदान चल रहा था साइलेंस का, द साइलेंट सर्मन, सुना आपने. अब और एक कारण, अर्जुन थॉट दैट दिस साइंस ऑफ फाइटिंग अ वॉर इक्विप्ड विथ नॉलेज इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कृष्णा. तो हमारे टीकाकार कहते हैं कि अर्जुन को लगा क्या भगवान ये कुछ नया मेरे लिए पकाकर तो नहीं खिला रहे, क्या कौन सी चीज, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अर्जुन ने कभी सुना नहीं था. अर्जुन अब तक बस सामने योद्धा आए, खत्म कर दो उसको. तो एक क्षत्रिय किस भाषा को अर्जुन समझते थे, परंतु यहां पर भगवान ने कहा कि नहीं, केवल खत्म नहीं करना है, केवल शस्त्र से नहीं मारना है, शास्त्र और शस्त्र इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। इक्विप्ड विथ नॉलेज यू हैव टू किल, यू हैव टू फाइट। तो ये अर्जुन ने सुना नहीं, तो अर्जुन को एक ये डाउट आ रहा था कि क्या मुझसे पहले जो कितने क्षत्रिय हुए हैं, क्या उन्होंने भगवान के इस कॉन्सेप्ट का पालन किया क्या? मुझसे पहले जो क्षत्रिय हुए, क्या उन्होंने ज्ञान के आधार पर कोई युद्ध लड़ा है क्या? तो भगवान जान गए, अर्जुन के एक्सप्रेशन के मनोभाव को जान गए, इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय का प्रारंभ किया। रुक जा, मैं बताता हूं, लिस्ट देता हूं जिनको तू जानता है अच्छी से अर्जुन, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं। भगवद गीता, मेरी सुनाई हुई भगवद गीता को सुनकर युद्ध लड़े हैं, मैं बताता हूं, बैठ सुन। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम, ये श्लोक फिर भगवान ने शुरू किया। तो ये कुछ और कारण चौथे अध्याय का जो प्रारंभ हुआ है उसके। अब वही चीज, अर्जुन वांटेड टू रिकन्फर्म अबाउट अदर क्षत्रिय वॉरियर्स फ्रॉम द पास्ट, तो रिकन्फर्म करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन के रिकन्फर्मेशन के लिए यह अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार से किया। अब श्री भगवान उवाच, ये जो भगवद गीता के श्लोकों में श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, ये सब जो आता है ये व्यासदेव जी ने डाला है, जब उन्होंने पब्लिश किया गीता। गणेश जी जो लिख रहे थे तो व्यासदेव जी डिक्टेट कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब इस श्लोक के पहले लिखो श्री भगवान उवाच, तो गणेश जी ने लिखा श्री भगवान उवाच। तो श्री भगवान उवाच का अर्थ प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि परंपरा की शुरुआत कैसे होती है, कैसे होनी चाहिए। और इसलिए व्यासदेव जी ने, क्योंकि ये जो 4.1 4.2 में परंपरा संप्रदाय के विषय में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम भगवद गीता के इस ज्ञान को पारंपरिक तरीके से समझें, सुना है ना आपने शब्द पारंपरिक, उसका अर्थ है परंपरा के द्वारा, उस लाइन में इसको समझें। तो परंपरा की शुरुआत केवल भगवान कर सकते हैं, इसलिए व्यासदेव जी ने भगवान उवाच कहा कि कोई भी परंपरा, प्रामाणिक परंपरा आप लो, जैसे कि पद्म पुराण में बताया गया है कि ये जो चार प्रामाणिक परंपरा हैं जिनके प्रतिनिधि भगवान के हुए, ब्रह्मा जी, श्रील प्रभुपाद, हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसकी शुरुआत अर्थात भगवान ने ज्ञान किसको, ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी से फिर आगे ये चलता गया ज्ञान। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय लक्ष्मी देवी द्वारा, तो भगवान ने लक्ष्मी देवी को ये ज्ञान दिया और शुरुआत भगवान से ही, परंतु जो मुख्य जिसको भगवान ने फाउंडर बनाया तो वो ब्रह्मा जी एक संप्रदाय के, लक्ष्मी देवी एक संप्रदाय, श्री संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, और फिर कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र हुए उन्होंने एक संप्रदाय शुरू किया कुमार संप्रदाय, और शिवजी, शिवजी को भगवान ने ज्ञान दिया, और रुद्र संप्रदाय ये चौथा प्रामाणिक संप्रदाय। तो ये जो चार प्रामाणिक संप्रदाय हैं जिनमें ये शुद्ध ज्ञान आ रहा है, इस इन चारों संप्रदायों की शुरुआत हुई है भगवान श्री कृष्ण से, इसलिए भगवान उवाच। किसी भी प्रामाणिक संप्रदाय में यदि आपको ज्ञान लेना है और जानना है कि वो प्रामाणिक है कि नहीं, पूछो शुरुआत कहां से हुई है। कोई अगर ये कह दे कि ये बाबा से हुई है, उस बाबा से हुई है, चलो भैया दूर हट। शुरुआत कहां से होनी चाहिए, श्री भगवान, भगवान से शुरुआत होनी चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं, अब देखिए एक सूक्ष्म मुद्दा है, प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कोई ज्ञान दे रहा है, यहां पर तो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं भगवान, साधारण कोई ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान मिल रहा है, तो वो एक व्यक्ति होना चाहिए। क्यों प्रभुपाद इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि अधिकांश भारत में भगवद गीता के ज्ञान को तो लोग इस्तेमाल करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण को क्रेडिट नहीं देते। देखिए कितना बड़ा इंसल्ट है ये कि उनके ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, उस पर प्रवचन देंगे, बड़ी बड़ी कथाएं करेंगे और या अलग अलग तरीके से, परंतु भगवान श्री कृष्ण को क्रेडिट नहीं देंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद को एक बार एक गीता ज्ञान उद्घाटन के लिए बुलाया था, तो गीता ज्ञान उद्घाटन और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का कोई चित्र नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कोई चर्चा नहीं, केवल एक दीप जला रखा है बीच में। तो प्रभुपाद वहां पर गए, प्रभुपाद ने कहा माइक पर, वी आर ओवर हियर फॉर दिस ओकेजन ऑफ गीता ज्ञान यज्ञ एंड इट इज सो सॉरी टू सी दैट देयर इज नो पिक्चर ऑफ कृष्णा हु स्पोक द गीता। जैसे मान लो कि किसी ने पुस्तक लिखी है, तो ऑथर का नाम होता है ना, और उसका बुक लॉन्च चल रहा है, अब उसकी पुस्तक का लॉन्चिंग चल रहा है, तो लॉन्चिंग में उसका नाम ही नहीं बोला जा रहा है, उसको बुलाया ही नहीं है, और यह बताया जा रहा है कि एक दिव्य शक्ति ने यह पुस्तक ऊपर से टपकाई है। ये आप लोग हंस रहे होंगे, लेकिन बहुत से गीता के टीकाकार भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख ही नहीं करते, कोई एब्स्ट्रैक्ट दिव्य कोई शक्ति है, नहीं 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 कोई व्यक्ति ने नहीं सुना है। जैसे आप किसी के घर पर भोजन के लिए जाओ, तो गृहिणी ने बहुत कुछ मेहनत कर इतने अलग अलग पकवान बनाए होंगे, और पकवान खाने के बाद फिर आप धन्यवाद देते हो ना जिसने पकाया है, तो यदि आपको पता नहीं किसने पकाया, आप पूछते हो कि भाई इतना सुंदर आज प्रसाद किसने बनाया, तो पति कहे शक्ति ने। बहुत हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। अब हां, घर में पत्नी को शक्ति बोलते हैं, हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से बोलते हैं कि जो गृहिणी होती है वो शक्ति होती है घर की, तो पति कौन होता है? सहन शक्ति। वो शास्त्र में नहीं बताया गया, वो हम हमारी तरफ से बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो मान लो इतने सारे व्यंजन बनाए और अतिथि ने पूछा कि इतना सुंदर किसने बनाया, शक्ति ने बनाया, तो कितना बड़ा इंसल्ट है, शक्ति ने बनाया। तो वैसे ही भगवद गीता भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रथ पर आरूढ़ अर्जुन को सुना रहे हैं, सबने देखा सुना, और आजकल के ये जो टीकाकार होते हैं कहते हैं कि ये किसी व्यक्ति ने नहीं सुनाई गीता, ये किसी शक्ति ने, यहां वहां जैसे कि कोई कोई लाइट है, ये वो शक्ति वहां से। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो ऐसा बोलते हैं उनसे बड़े मूर्ख हैं जो सुनकर मान लेते हैं, हां सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, अरे तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि वो तुमको मूर्ख बना रहा है और तुम बनते जा रहे हो, हां भगवद गीता किसी व्यक्ति ने नहीं सुनाई। इसलिए आप देखो व्यासदेव जी बहुत ही ध्यान पूर्वक जब भी भगवान ने कोई श्लोक का उच्चारण किया है तो श्री भगवान वाच, कि ये एक व्यक्ति हैं, और परंपरा की शुरुआत और सब कुछ परंपरा एक व्यक्ति से ही हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए श्री भगवान उवाच, अब इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, अर्थात मैंने यह अविनाशी योग सूर्यदेव से कहा। तो ये पहली पंक्ति है आज के श्लोक की, जहां पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस अविनाशी ज्ञान को, अर्थात अव्ययम, अव्ययम अर्थात अविनाशी ज्ञान को मैंने विवस्वते इस योग को, हाँ इस अविनाशी योग को विवस्वते अर्थात सूर्यदेव प्रोक्तवान मैंने कहा, ये इसका अर्थ है। तो अब हम सूर्यदेव के विषय में कि सूर्यदेव को यह ज्ञान भगवान ने क्यों दिया, क्योंकि अभी भगवान किसी को चूज कर रहे हैं एज अ रेसिपिएंट, गीता सुनाने के लिए भगवान यदि किसी को चूज कर रहे हैं तो सोच समझ के भगवान ने चॉइस किया होगा ना, कि इतने सारे अलग अलग राजाओं में, क्षत्रिय राजाओं में भगवान ने सूर्यदेव को क्यों चुना, भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना, नहीं तो जैसे मुझे प्रश्न पूछा था दिल्ली में, भगवान ने भीम को क्यों नहीं सुनाई, वो तो अच्छा हुआ उसने ये नहीं पूछा मुझे क्यों नहीं सुनाई। तो शास्त्रों में सूर्यदेव के विषय में, अब हम भी देखिए सूर्यदेव के विषय में बहुत कुछ अब तक सुने होंगे, गायत्री मंत्र में कैसे सूर्यदेव का गुणगान हुआ है, और कई बार आप देखते हो भारत में लोग सुबह सुबह बाहर आते हैं लोटा लेकर सूर्य को देखकर, हाँ सूर्य नमस्कार करते हैं, पानी अर्पित करते हैं, सूर्य की पूजा, यहां तक राधा रानी उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो हम भागवत में पांचवें स्कंद में सूर्यदेव के विषय में जो कुछ कहा गया है उसकी हम चर्चा पहले करें। किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स कहा गया है कि सभी ग्रहों में सूर्यदेव जो हैं वो राजा हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन यापन के लिए हमें आवश्यक है, हीट एंड लाइट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को चलाने के लिए, उनके सोर्स हैं सूर्यदेव। उनका एक बहुत ही विशेष रथ है, सूर्यदेव का एक बहुत विशेष रथ है, एक ही पहिया है उस पर, एक चक्का है और सात घोड़े हैं, और उनके सारथी का नाम क्या है? अरुण देव। तो अरुण देव जो हैं वो सूर्यदेव के सारथी हैं, और सूर्यदेव का रथ जो कि केवल एक पहिए पर चलता है सात घोड़ों द्वारा। क्यों? ये सब पांचवें स्कंद में इसका वर्णन है कि ये सब सूर्यदेव के विषय में क्यों बताया गया। अब उनके कुछ रथ की स्पीड बताई गई है कि एक मुहूर्त होता है 48 मिनट, 48 मिनट्स। सूर्यदेव कितने योजन चलते हैं? 34,800,000, कितना हो गया? 34,800,000 योजन, और एक योजन जो होता है उसकी उसका कैलकुलेशन बताया, एक योजन 8 मील या 12 किलोमीटर, एक योजन। तो एक योजन जो कि 12 किलोमीटर बताया गया है, तो ट्रैवल स्पीड पर सेकंड सूर्यदेव के रथ की क्या है? 14,170 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड जरूरी है देखना, यह है उनके रथ की स्पीड। क्या हॉर्स पावर होगा? इसलिए बोलते हैं ना हॉर्स पावर, सात हॉर्स पावर, सात घोड़े, एक पहिया। अब सूर्यदेव का प्रभाव, ये इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तो कुछ संक्षिप्त रूप में कुछ विवरण सूर्यदेव का जो पांचवें स्कंद में दिया है उसकी हमने चर्चा की। अब प्रथम अध्याय के इस श्लोक 21वें श्लोक से संबंध है सूर्यदेव का। कौन सा श्लोक है? एक आपको हिंट देते हैं, इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। तो आपको प्रश्न अब तक यह होगा कि अब सूर्यदेव का क्या कनेक्शन है इसमें। महाभारत में वर्णन है कि सेनाएं जो हैं वो रात को तैनात हो गई थी, जिस दिन भगवत गीता या अर्जुन ने भगवान को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े करने के लिए कहा उसके एक रात पहले सेनाएं तैयार थीं और चंद्र की रोशनी में सेनाएं एक दूसरे को देख रही थी, दिख रही थी, और वो लोग सोए नहीं, रात भर वहां पर सूर्यदेव कब उगेगा तो युद्ध प्रारंभ होगा उसकी प्रतीक्षा में थे। होल नाइट बोथ दी आर्मीज वर वेटिंग, दे वर सीइंग ईच अदर इन मून रेज मून शाइन, दे वर नॉट फाइटिंग। और जैसे ही सूर्य का उदय हुआ, थोड़ा थोड़ा अब सूर्य की रोशनी दिखने लगी, तब अर्जुन को ठीक से दिख नहीं रहे थे। चंद्र की रोशनी में अर्जुन को कौन कौन सामने खड़े हैं अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए अब जैसे सूर्य उदय हुआ तो अर्जुन को दिखाई देने लगे, अरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य। तो अर्जुन, हालांकि अर्जुन जानते थे कि वो साइड में खड़े कौन रहेंगे, वही खड़े रहेंगे, परंतु होता है ना कि एग्जाम से पहले पता है क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन आने के बाद जो हालत होती है ना, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले मालूम है वहां लड्डू पेड़े तो नहीं बटने वाले, क्वेश्चन पेपर बटने वाले, तो उस समय इतना क्वेश्चन पेपर अभी तक हाथ में नहीं आया तो डर इतना नहीं, जैसे हाथ में बाप रे क्वेश्चन पेपर, हाँ तो भैया क्या एक्सपेक्ट किया था। तो वैसे अर्जुन जानते थे कि सामने कौन, लेकिन अभी जब सूर्य उदय हुआ और अब एकदम ठीक ठीक अर्जुन ने देखा कि कौन कौन खड़े, तो अर्जुन फिर भगवान से कहते हैं मुझे और ध्यान से देखना है, रिकन्फर्म करना है कि ये लोग ही खड़े हैं कि नहीं खड़े। तो भगवान ने उस समय अर्जुन से कहा अर्जुन सूर्य उग गए हैं दिखाने के लिए, देखो कौन कौन खड़े हैं, बीच में क्या ले जाने की जरूरत, नहीं, नहीं मेरे को और पास से देखना, जूम करो। तो फिर भगवान अर्जुन को ले, तो ये कनेक्शन है कि कैसे भगवद गीता की शुरुआत हुई अर्जुन के विषाद से, अर्जुन के विषाद की शुरुआत हुई देखने से, और अर्जुन देख पाए सूर्य देव के उगने से। कनेक्शन समझ में आए। तो हम लोग आज यहां पर बैठे हैं, गीता सुन रहे हैं, चौथे अध्याय तक पहुंचे हैं, किसके वजह से, हरि बोल। तो एक हमारे टीकाकार इस प्रकार का कनेक्शन देते हैं, बहुत से कारण है हमारे बैठने के यहां पर, हम जानते हैं बहुत से कारण है बैठने के। तो ये सूर्यदेव का प्रभाव प्रथम अध्याय के उस श्लोक से संबंध। हनुमान जी ऐसा नहीं कि केवल किसी एक ग्रंथ में सूर्यदेव या भागवत में या महाभारत में वर्णन है, रामायण में बचपन में हनुमान जी उन्होंने सूर्यदेव को देखा और सूर्यदेव को खाना चाहा, हम ये कथा सुने होंगे, बचपन में हनुमान जी ने सूर्यदेव को देखा तो उनको लगा कि इतना बड़ा फल, क्योंकि वो एक वानर के रूप में, तो वानर जो है फल से बहुत प्रभावित होते हैं, तो हनुमान जी ने सूर्य को देखा तो उनको लगा इतना सुंदर दिखने वाला फल तो इसको तो मुझे खाना है, कूद पड़े हनुमान जी, कूद गए, छलांग लगाई कहा सूर्य को खाने के लिए, और सूर्यदेव अपने रथ पर बैठे अरुण देव चला रहे हैं, अचानक देख रहे हैं हनुमान जी आ रहे हैं। अब एक विशेषता देखिए, हमको ये प्रश्न उठा होगा कि हनुमान जी इतना निकट सूर्यदेव के पहुंच गए तो जले नहीं क्या? सूर्यदेव के विषय में बताया गया है कि सूर्यदेव यदि एक इंच भी थोड़ा निकट आ जाए तो पूरी सृष्टि को जला दे, एक इंच भी दूर चला जाए तो पूरी सृष्टि बर्फ बन जाए, तो फिर हनुमान जी जले क्यों नहीं, इतना पास चले गए? सूर्यदेव के अंदर एक बहुत विशेष कंट्रोल सिस्टम है, वो अगर चाहें तो उनके लोक में भी कोई प्रवेश कर जाए बिना जले, अगर सूर्यदेव चाहें तो। और अगर सूर्यदेव चाहें तो कहीं पर भी किसी को जलाना है तो दूर से ही थर्मोस्टैट बढ़ाकर केवल उस व्यक्ति को जलाकर भस्म कर सकते हैं, एक किरण छोड़ेंगे वहां से उसके लिए खाली विशेष, उसका टेम्परेचर बढ़ा के, ये उनके अंदर शक्ति है। तो जब सूर्यदेव रथ पर बैठे अरुण सात घोड़ों को चला रहे हैं एक पहिए के इस रथ को, सूर्यदेव ने देखा हनुमान जी, सूर्यदेव पहचान गए, अरे ये तो मेरे प्रभु श्री राम, जिस वंश में रामचंद्र जी, कौन से वंश में रामचंद्र जी पैदा हुए? सूर्य वंश में, जिस मेरे वंश में प्रभु श्री राम अवतरित होने वाले हैं, उनके ये भक्त हनुमान जी। तो सूर्यदेव ने उनका स्वागत किया और हनुमान जी को अपने रथ में अपने बगल में बिठाया और बोला चलो हम एक सैर पर चलते हैं। तो सोचो हनुमान जी बचपन में घूमने के लिए किसके साथ और किसके व्हीकल में बैठकर गए, स्पीड अपने अभी सुन लिया। तो हनुमान जी बचपन में सूर्य देव के बगल में बैठे हुए सैर पर निकले। तो ये सूर्य देव का प्रेम यहां पर बता रहे हैं, सूर्यदेव इनका प्रेम हनुमान जी से या प्रभु श्री राम के भक्तों से। अच्छा, एक बार सूर्यदेव का आगमन पृथ्वी पर भी हुआ कि वो अपना रथ छोड़कर पृथ्वी पर भी आए, इस पृथ्वी पर, कब? हाँ, कुंती महारानी, कुंती महारानी उनको दुर्वास मुनि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हो। तो कुंती महारानी चेक करने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं वरदान, उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। तो सूर्यदेव, अब डेफिनेटली दुर्वास मुनि ने जो वरदान दिया था पूरा वैलिड था, पूरा चार्ज था उसके अंदर। तो सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव को देखा कुंती महारानी ने, तो कुंती महारानी एकदम चकाचौन रह गई, चकाचौन व्यक्ति आए, सूर्यदेव आए। और फिर सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं आया हूं तो मैं तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न कर दूंगा, और वो हुए कर्ण। और उसके साथ साथ सूर्यदेव ने कुंती महारानी का जो कन्यात्व है, वर्जिनिटी, वो मेंटेन रखा, और फिर सूर्यदेव वापस अपने लोक चले गए। तो केवल कुंती महारानी के लिए सूर्यदेव कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। अच्छा, एक और चीज बताई गई है हमारे शास्त्रों में कि सूर्यदेव वो अपने रथ पर बैठे बैठे वार्तालाप कर सकते हैं पृथ्वी के लोगों से, ये कनेक्टिविटी है। तो इसमें महाभारत के उद्योग पर्व में ये कथा है कि युद्ध के पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले, कुंती महारानी कर्ण के पास जाती हैं और कर्ण को कहती हैं कि बेटे तुम्हारे पिता हैं सूर्यदेव और मैं तुम्हारी माता हूं, तो तुम सबसे ज्येष्ठ इन सबके भाई हुए, किनके? अर्जुन, भीम इत्यादि के सबसे ज्येष्ठ भाई तुम हुए। तो कर्ण को विश्वास नहीं हो रहा था, तब कुंती महारानी ने फोन लगाया सूर्यदेव को, मतलब दिव्य तरीके से सूर्यदेव को कहा कि आप विश्वास दिलाइए कि आप इसके पिता हुए हैं। तब फिर सूर्यदेव ने वहां से बैठे बैठे, अपने रथ से बैठे बैठे सूर्यदेव ने अपनी वाणी कर्ण को, और जैसे एक पिता प्रेम पूर्वक अपने बेटे को वो कैसे पुकारता है या वार्तालाप करता है, उस प्रकार से सूर्यदेव अपने रथ पर बैठे बैठे वो कर्ण के साथ वार्तालाप की और कर्ण को उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, मैं ही तुम्हारे पिता हूं। तो कर्ण ने सुन लिया, जान लिया, उसके बाद भी कर्ण वो दुर्योधन का संग नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये कर्ण का एक दुर्गुण कि भगवान श्री कृष्ण, कुंती महारानी, सूर्यदेव स्वयं कर्ण को कहे, फिर भी उसने दुर्योधन का संग छोड़ा नहीं, इसलिए मारा गया वो। तो अपने रथ पर बैठे बैठे सूर्यदेव, एक और कथा आती है पद्म पुराण में, प्रसिद्ध कथा आपने सुनी होगी दुंदुकारी की, कि दुंदुकारी ये एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था एक समय, जो कि अपने ब्राह्मण के पद से च्युत होकर वो बहुत कुकर्मी बन गया और भूत बन गया मरने के पश्चात। तो दुंदुकारी का भाई जिनका नाम था गोकर्ण, तो वो अपने भाई का उद्धार कराना चाहते थे जो कि अभी भूत बन चुका था। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मेरे भाई का उद्धार हो, तो उन्होंने सूर्य देव को पूछा कि कैसे मेरे भाई का उद्धार हो। तो सूर्य देव अपने रथ पर बैठे उन्होंने गोकर्ण को कहा कि श्रीमद् भागवत सुनाओ, अपने जो भी उसका आत्मा है भूत की योनि में उसको भागवत सुनाओ। तो उस गांव में जहां पर दुंदुकारी भूत के रूप में यहां वहां मंडराता था, उस गांव में भागवत कथा रखी गोकर्ण ने, किसके आदेश पर? सूर्यदेव के आदेश पर। और यह बताया गया है कि दुंदुकारी उसका तो उद्धार हुआ ही, पूरे गांव का उद्धार हुआ, पूरा गांव वैकुंठ धाम चला गया भागवत सुनकर। यहां तक कि वो गांव के कुत्ते जानवर वो सब भी चतुर्भुज रूप लेकर वैकुंठ चले गए। तो यहां पर यह भी पद्म पुराण में कथा है जहां सूर्यदेव ने पृथ्वी पर वार्तालाप किया पृथ्वी के लोगों से। श्रील प्रभुपाद ने जो सबसे पहली मैगजीन जो अब तक चल रही है शुरू की, बैक टू गॉडहेड, तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन का जो कैप्शन प्रभुपाद ने रखा वो क्या था? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद, ये जो बैक टू गॉडेड मैगजीन, अभी भी बैक टू गॉडेड मैगजीन आप देखो उसके अंदर यही जो कैप्शन है, जिसके अंदर ये जो श्लोक चैतन्य चरितामृत का श्रील प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया कि भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई। अब देखो, जिन सूर्य को भगवान ने बनाया है, इसकी सृष्टि भगवान ने की, परंतु भगवान की तुलना सूर्य से की गई है कि कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता, जैसे कि जहां पर सूर्य है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता। एक और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सूर्य और चंद्र का उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि भगवान की जो दो आंखें हैं वो कौन है? सूर्य और चंद्र, ये भगवान की दो आंखें हैं। इसलिए जब पूतना भगवान को मारने आई तो भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, निमिली तेक्षण। तो दोनों आंखें कौन है? सूर्य और चंद्र। तो उन्होंने देखा कि ये पूतना भगवान को मारने आई है और भगवान इसका उद्धार करने वाले हैं, क्योंकि भगवान के संपर्क में जो भी आएगा उसका उद्धार होगा। तो भगवान इसका उद्धार करने वाले अर्थात इसको आध्यात्मिक संसार मिलने वाला। तो हमारे शास्त्रों में बताया है कि जो भी साधक अपनी साधना संपन्न कर वैकुंठ जाता है, आध्यात्मिक संसार में जाता है, तो एक रूट है, उसी रूट से जाता है, वो बहुत स्पेशल रूट है, उस रूट का नाम है अर्ची पथ। अर्ची अर्थात सूर्यदेव, सूर्यदेव का एक और नाम है अर्ची, तो अर्ची पथ सूर्यदेव के पथ से वो आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता है। तो अब भगवान की एक आंख है सूर्यदेव, तो भगवान के जो अर्ची पथ भगवान की आंखों में, उन्होंने बंद कर लिया अपने आप को कि मैं यहां पे एंट्री नहीं दूंगा पूतना को जाने की, क्योंकि ये भगवान को मारने आई है। तो भगवान ने जानबूझ के खोलने बोला, खोलो नहीं, मुझे इसका उद्धार करना है, किसका, पूतना का। तो भगवान ने अपने आंखों से यदि किसी को देख भी लिया उद्धार करते समय, मतलब उसको अर्ची पथ का सैंक्शन मिल गया, अर्ची पथ का सैंक्शन मतलब वैकुंठ धाम का टोल भर दिया उसने, क्लियरेंस हो गया जाने के लिए उस पाथ पर उसका। तो ये एक और कंपैरिजन है सूर्यदेव का, भगवान की जो आंखें हैं। अब आज के श्लोक में भगवान ने इस योग को अव्यय कहा है। तो ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्द को हम लेंगे, योग और अव्यय। तो भगवान ने योग के द्वारा अर्जुन को कहा कि योग का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच में आध्यात्मिक मिलन, उसको योग कहते हैं। और दो व्यक्तियों के बीच में भौतिक मिलन, उसको क्या कहते हैं, भोग। और रोग, भोग के बाद रोग। परंतु दो व्यक्तियों का आध्यात्मिक मिलन योग है। तो क्यों आज के श्लोक में भगवान ने योग, इस ज्ञान, ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, इसको योग के नाम से संबोधित किया? क्योंकि ये जो गीता का ज्ञान है दो व्यक्तियों का आध्यात्मिक मिलन कराता है। तो हम भी जब भगवद गीता पढ़ें तो हमें किस भावना में पढ़ना चाहिए कि मैं एक आध्यात्मिक आत्मा हूं और भगवान जो कि परम आध्यात्मिक है, तो मेरा भगवान के साथ मिलन इस गीता के द्वारा होना चाहिए। और अव्यय का अर्थ है अपरिवर्तनशील, अर्थात श्रील प्रभुपद इसके विषय में कहते हैं कि भगवद गीता का ये जो ज्ञान है, चाहे भगवान ने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को दिया हो या 5000 साल पहले अर्जुन को दिया हो, या अभी हम 2014 में 1 जनवरी को सुन रहे हैं, या आगे चलकर 2040 में यदि हम जिंदा रहे उस समय यदि हम सुने, या कोई भी काल में हम सुने, ये जो साइंस है प्रभुपाद कहते हैं अपरिवर्तनशील है। क्यों प्रभुपाद इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि कई बार साइंस कुछ प्रस्ताव सामने प्रस्तुत कर गया, कोई हमको थियोरी देती है, जैसे कि साइंटिस्ट पहले उनका यह मानना था कि पृथ्वी जो है फ्लैट है। हमने भी ये सुना है कि साइंटिस्ट ने पहले कह दिया पृथ्वी फ्लैट, हमारे अनुसार पृथ्वी फ्लैट है, आप जाओ एक पॉइंट पर स्पेस में गिर जाओगे, फिर बाद में अरे नहीं 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 हमसे गलती हो गई, फ्लैट नहीं गोल है, पृथ्वी गोल है, भूगोल। तो पहले उन्होंने कहा तो हमने मान लिया, फिर उन्होंने कहा कि गोल है, ठीक है गोल, पता नहीं आगे चल के बोले नहीं स्क्वायर है। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे कि भगवद गीता का ज्ञान ऐसा नहीं कि सूर्यदेव को भगवान ने करोड़ों वर्ष पहले श्लोक सुनाए और फिर अर्जुन को अब आए श्लोक सुनाने वाले, मैंने वो एक श्लोक में गलती कर दी थी, थोड़ा उसको रेक्टिफाई करने के लिए वापस सुना रहा हूं, तो उसको इरेज कर देना पिछले रिकॉर्डिंग को, अभी इसको कोई एडिटिंग नहीं होता है भगवद गीता में, इसलिए अव्यय अपरिवर्तनशील ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि इतने समय पहले भी जो भगवान ने सुनाया उसके बीच में भी कितनों ने सुनाया और भगवान वापस इसको सुना रहे हैं, हर समय ये ज्ञान अपरिवर्तनशील है। देर आर नो अमेंडमेंट्स इन भगवद गीता, बेसिकली ये समझ लीजिए। अब आगे भगवान कह रहे हैं, विवस्वान मनवे प्राह, सूर्य देव विवस्वान ने यह अविनाशी उपदेश अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, तो विवस्वान के पुत्र का नाम हुआ वैवस्वत मनु। इन सब के विषय में श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो अभी जो सूर्य देव की पोस्ट पर हैं, विवस्वान जिनका नाम है, उनके पुत्र जो कि वैवस्वत मनु हुए, तो ये वैवस्वत मनु क्यों, इनको ये ज्ञान के लिए चुना गया, क्योंकि ये अपने पिछले जन्म में सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत वो जिनके लिए, ये एक ऐसे राजा हुए, ऐसे राजऋषि हुए जिनके लिए स्वयं भगवान मत्स्य रूप में आए, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार अर्थात एक मछली के रूप में, केवल सत्यव्रत मुनि के लिए। सोचो कितने महत्वपूर्ण ये व्यक्ति होंगे कि इनके लिए भगवान ने एक अलग विशेष अवतार लिया केवल उनके लिए। और सत्यव्रत राजा क्योंकि मत्स्य के रूप में, तो धीरे धीरे यहां, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि सत्यव्रत राजा ने देखा कि वो जब शिकार के लिए वहां पर स्नान करने के लिए वन में थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर, बहुत ही अनोखी मछली, तो उन्होंने अपने हाथ में लिया, मछली बढ़ने लगी, उनका साइज बढ़ने लगा, तो उसको बड़े सरोवर में डाला, मछली और पूरे सरोवर में बड़ी हो गई, तो उठाकर फिर समुद्र में डाला, और समुद्र में भी वो मछली कितने करोड़ों योजन लंबी मछली। तब फिर राजा सत्यव्रत वो जान गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। और फिर भगवान मत्स्य अवतार में सत्यव्रत मुनि अपने जहाज में बैठे हुए, समुद्र में जहाज में बैठे हुए, और मत्स्य अवतार उनको ये दिव्य ज्ञान उन्होंने दिया। तो वो सत्यव्रत मुनि अगले अपने जन्म में वैवस्वत मनु बने। तो मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवीत, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब ये परंपरा हम देख रहे हैं, विवस्वान ने वैवस्वत मनु को, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु। तो ये इक्ष्वाकु कौन हुए कि जैसे मानव शब्द है, तो मानव शब्द हम मनुष्यों को क्यों कहा गया है कि जो मनु के पुत्र हुए उनको कहा गया मानव। तो इस मन्वंतर में 14 मन्वंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, वो थोड़ा टेक्निकल है उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये जो मन्वंतर चल रहा है, इस मन्वंतर के जो मनु हैं उनके जो सबसे पहले पुत्र वो हुए सबसे पहले मानव, तो वो इक्ष्वाकु, ये इनका नाम। अब इक्ष्वाकु ये बहुत ही विशेष राजा हुए, इनकी स्टोरी बहुत विशेष है, इनके इनकी इनकी बर्थ स्टोरी बहुत विशेष है। तो हम इनकी बर्थ स्टोरी समझने के लिए इनका जो नाम है इक्ष्वाकु, इसका विश्लेषण कर समझने की कोशिश करेंगे कि इक्ष्वाकु नाम का अर्थ क्या है। तो ये तीन अक्षरों से बना, इक्षु और आकु, इनसे बना ये नाम इक्ष्वाकु। तो ई का अर्थ है आश्चर्य, क्षु का अर्थ है छींक। जैसे होता है ना, जब हमको छींक आती है तो कैसी आवाज निकलती, छू। तो संस्कृत में इनको जो नाम मिला, इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत विशेष स्टोरी है। और आकु का अर्थ है बेचैन। तो पूरे नाम का अर्थ क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जन्म के समय अपने पिता को आश्चर्य तथा छींक के द्वारा बेचैन कर दिया। हरे कृष्ण, आपको लग रहा होगा ये क्या नाम हुआ भाई। तो इक्ष्वाकु इनके पुत्र इनके पिता वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु की पत्नी उनका नाम था श्रद्धा। तो वैवस्वत मनु वो इक्ष्वाकु को अपनी पत्नी के द्वारा जन्म नहीं दिए। महाराज इक्ष्वाकु का जन्म किसी माता के गर्भ से बाहर निकलकर नहीं हुआ। कैसे हुआ? वैवस्वत मनु को एक बार छींक आई और उनके नथुने से नॉस्ट्रिल्स से इक्ष्वाकु पैदा हुआ। हैप्पी बर्थडे उनका इस प्रकार से। क्यों? अब प्रश्न आपका है कि ये क्या तरीका है पैदा होने का, छींक से यहां से बाहर आना। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि इक्ष्वाकु ये एक ऐसे राजा हुए, ऐसी आत्मा ये थी इनकी, कि साधारणतः जब कोई पैदा होता है, कोई भी जीव इस संसार में पैदा होता है, तो जैसे कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि भैया हम अकेले आए अकेले जाएंगे, नहीं, दो लोग लगे थे हमको पैदा करने के लिए, चार लोग लगे ले जाने के लिए। हाँ, और लोग बोलते हैं अकेले आए अकेले जाए, लेकिन इक्ष्वाकु उनके लिए उनको माता की जरूरत नहीं पड़ी। तो साधारणतः किसी का जन्म कैसा होता है कि जब जो पति है या जो पिता है उसका वीर्य माता के गर्भ में जाता है, उसका जब मिलन होता है तब जाकर, जैसे मेडिकल साइंस के अनुसार सीमेन एंड ओवम उसका जब मिक्सचर होता है तब जाकर कंसेप्शन होता है। परंतु इक्ष्वाकु जिस वीर्य में प्रवेश किया उन्होंने, इक्ष्वाकु ने जब वैवस्वत मनु के वीर्य में प्रवेश किया तो उन्होंने उस वीर्य को ऊपर की दिशा में बहाया। द सीमेन स्टार्टेड फ्लोइंग अप और वो छींक के द्वारा बाहर आए और डायरेक्टली पैदा हो गए। क्यों ऊपर की ओर? क्योंकि उनके अंदर इतना सत्वगुण था, इतना शुद्ध सत्व था कि वो वीर्य नीचे की ओर बह ही नहीं रहा था, ऊपर की ओर बह रहा था। और वीर्य किसी पुरुष में जब ऊपर की ओर बहता है तो वो ऊर्ध्व रेतस उसको कहते हैं, वो बहुत ही स्पेशल वो व्यक्ति होता। तो इस प्रकार से वो ऊपर की ओर उस वीर्य को बहाते हुए उनके छींक से बाहर आए, इसलिए इक्ष्वाकु। तो उनके पिता आश्चर्य में चले गए कि ये क्या हुआ, मैंने छींका और अचानक छींक में ये कौन पैदा हो गया। तो जैसे वो पैदा हुए, पापा मैं आ गया बोला होगा तो मम्मी आई, बोला नहीं मम्मी नहीं है, पापा ही है खाली हमारे, मम्मी मम्मी नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा जी उनकी पैदाइश भी ऐसे ही कि डायरेक्टली भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो इसलिए इक्ष्वाकु इतने विशेष वो राजा हुए कि उनका नाम, इसलिए इस प्रकार का नाम उनको दिया गया कि हर समय, जैसे हमने इसको विश्लेषण कर इसकी चर्चा की कि याद रहेगा कि इक्ष्वाकु वंश में जो रामचंद्र जी भी आए तो जब भी ये इक्ष्वाकु नाम आपको सुनाई दे तो तुरंत, और वो छींक बहुत विशेष छींक थी, ऐसा नहीं कि उनको सर्दी हो रही थी, सर्दी का मौसम है, सर्दी हो रही थी, नाक बंद है तो इसलिए छींक दिया, या अचानक कुछ नाक में घुस गया तो छींक दिया, नहीं, बहुत विशेष आत्मा जिन्होंने उनके वीर्य में प्रवेश कर वीर्य को ऊपर बहाया और वहां से वो नथुने से बाहर आकर वो एक ऐसे महान राजा बने जिनके वंश में आगे चलकर प्रभु श्री राम अवतरित हुए। तो अब प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये राजाओं का उदाहरण क्यों दिया? सूर्यदेव, मनु, वैवस्वत मनु और इक्ष्वाकु, इन राजाओं का भगवान ने नाम क्यों दिया? तो कुछ कारण। सबसे पहला, ये जो राजा, इन्होंने अपने शत्रुओं का संहार किया भगवद गीता के ज्ञान के आधार पर। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि भगवान अर्जुन को ये दिलासा देना चाह रहे थे कि अर्जुन केवल तुम अकेले नहीं रहोगे जिन्होंने भगवद गीता के आधार पर युद्ध लड़ा है। मैं बता रहा हूं कौन कौन पहले लड़े हैं तुमसे पहले कौन कौन। तो यहां पर महाराज इक्ष्वाकु उनके कथा है कि ये भी बहुत विशेष कथा है। एक बार महाराज इक्ष्वाकु अपनी पत्नी सुदेवा उनके साथ शिकार पर निकले। तो शिकार पर निकले तो जंगल में, अब महाराज इक्ष्वाकु इतने प्रसिद्ध राजा, देखो उनकी पैदाइश इतनी प्रसिद्ध, सभी जानते थे कि वो कैसे पैदा हुए बिना किसी माता के गर्भ से बाहर निकले हुए। तो जंगल में जब वो शिकार के लिए घूम रहे थे तो एक सुअर ने महाराज इक्ष्वाकु को देख लिया और सुअर ने अपनी पत्नी से कहा और बच्चों से कहा कि आज हमारा सौभाग्य है कि शिकार करने के लिए महाराज इक्ष्वाकु आए हैं। तो किसी प्राणी, जंगली प्राणी का सौभाग्य कैसे हो सकता है कोई शिकार करने आए। परंतु उन्होंने कहा कि क्यों, सुअर ने अपनी पत्नी से कहा, ए जी सुनो, जो भी भाग्यवान सुनो, कि ये महाराज इक्ष्वाकु आए हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर आज हमें इनके हाथों मरना है। हां, क्योंकि हम सुअर की योनि में हैं तो ये मारेंगे नहीं हमको, ये शिकार नहीं करेंगे क्योंकि ये सुअर की योनि, लेकिन हम सामने जाकर ललकारेंगे। एक सुअर ललकारेगा क्षत्रियो को, मैं लड़ना चाहता हूं, लड़ो मुझे, मारो। पति बोले क्यों भाई, अच्छा खासा हमारा गृहस्थ आश्रम चल रहा है। इतने हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अभी नया साल चालू हुआ है, खाने बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती हमको। तो वो पत्नी वो थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि क्यों भाई, मरना क्यों चाहते हो अचानक, अभी अभी तो हमारी शादी हुई, अभी मरना चाहते तुम। कहा नहीं, इनके हाथों मरेंगे तो वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। हायर प्रोस्पेक्ट्स क्या प्राप्त होगा, वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तो उन्होंने पूछा कि इनके हाथों मरने से वैकुंठ धाम क्या गारंटी है कि इनके हाथों से हम लोग मरेंगे तो हमको वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तो सुअर ने कहा कि इक्ष्वाकु ने परंपरा में भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता का श्रवण किया है, इसलिए जब वो मारेंगे तो वो भगवद गीता के आधार पर मारेंगे, और भगवद गीता के आधार पर जो क्षत्रिय किसी का वध करता है तो जिसका वध हुआ है उसको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो ये कारण था, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि भगवद गीता सुनकर जब तुम मारोगे ना तो ये सब का उद्धार होने वाला है। एक सुअर का हो गया, सुअर के पूरे परिवार का, उसके पूरे खानदान का, अरे ये लोग तो सब मनुष्य हैं। तो ये कारण भगवान ने, हमको लग रहा होगा क्यों भगवान अचानक गीता के बीच में ये लिस्ट बता रहे हैं विवस्वान, अरे भैया थोड़ा फिलॉसफी बताओ, इसके पीछे भी ये सारे गूंजे कारण है कि भगवान अर्जुन को, क्योंकि हमको ये सब स्टोरी तो पता नहीं, इक्ष्वाकु कौन थे नाम ही बोल नहीं पा, इक्ष्वाकु क्या पता नहीं क्या नाम ही बोल नहीं पा रहे, वो कैसे पैदा हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन अर्जुन वो उस जमाने के, जब उनको सब कुछ ये शास्त्र का ज्ञान था, तो इक्ष्वाकु कौन थे बोलने से अर्जुन समझ गए। हमको दो हफ्ते बाद पूछो कौन थे विवस्वान के पुत्र, उनके पुत्र कौन थे, भैया ये मत पूछो, शाहरुख खान का बेटा कौन है बता देंगे, अमिताभ बच्चन का बेटा बहू कौन है बता देंगे, ये मत पूछो विवस्वान के बेटे बहू कौन थे, ये हमारी हालत है। तो भगवान इसलिए ये सब बता रहे हैं अर्जुन कि अर्जुन ये सब इतिहास जानते थे, नाम लेने से अर्जुन समझ गए कि क्या पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इक्ष्वाकु इनका क्या था, वैवस्वत मनु का क्या था, सूर्यदेव विवस्वान इनका क्या था। दूसरा कारण, टू मेक द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता ऑथेंटिक फॉर जनरल मासेस बाय कोटिंग इन्फ्लुएंशियल रिसिपिएंट्स ऑफ दिस साइंस। तो अर्जुन, अब मानो अगर अर्जुन ये सोचें कि मैं अकेला यहां पर बैठकर सुन रहा हूं, क्या थोड़ा होना चाहिए। अभी मान लो कि नेक्स्ट गीतामृत कार्यक्रम आप अकेले आए, मैं और आप, बस एक अकेला व्यक्ति, आप देखोगे कुर्सियां लगी, कोई आया नहीं, मैं अकेला, कुछ गड़बड़ है क्या, है ना, थोड़ा डाउट आएगा ना। इतने सारे लोग बैठकर सुन रहे हैं, इधर भी ऊपर भी बाहर भी उसके भी ऊपर, सब जगह लोग सुन रहे हैं, फिर आप लोग, हाँ कुछ तो दम है लगता है। फिर बगल में आप देखते हो, अरे ये मेरा बॉस बैठा है, मेरा बॉस भी आया है भगवद गीता सुनने के लिए, मेरी बात सुनता नहीं, गीता सुन रहा है यहां। तो जब आप कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, हाँ जैसे एक बार हम उदाहरण दे रहे थे कि अगर सचिन तेंदुलकर आ जाए अगले गीतामृत में, अभी तो रिटायर हो गया बोलते, फिर भी नाम है, सचिन तेंदुलकर आ जाए तो देखो कितनी वो पार्किंग लॉट में कितनी गाड़ियां आ जाएंगी, क्या सब लोग न्यूज रिपोर्टर वगैरह सब लोग आएंगे सचिन तेंदुलकर गीतामृत सुनने के लिए, भगवद गीता सुन रहे, तो सचिन तेंदुलकर गीता कैसे सुनेंगे, तो न्यूज रिपोर्टर, तो हम अब देखना चाहेंगे कि सचिन तेंदुलकर कौन से पोजीशन पे बैठ के गीता सुनेंगे, वो साइडवेज बैठेंगे, वो सामने बैठेंगे, वो ऊपर बैठेंगे, वो बालकनी में बैठेंगे, कि क्या अब देखना चाहेंगे हम कि सचिन तेंदुलकर गीता कैसे सुनेंगे, और गीता सुनते समय क्या उनके भाव होंगे, उनके उनके आदान प्रदान क्या होंगे वो प्रवक्ता के साथ। तो आप जमे रहिए, बीच में ब्रेक के बाद हम आएंगे, आप जमे रहिए, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो आ गए सचिन तेंदुलकर, हाँ सचिन तेंदुलकर अभी गीता का ये श्लोक और सुन रहे हैं, बीच में डुलकी मार दी उन्होंने, लगता है गुगली के बदले डुलकी मार रहे हैं जो। तो यदि सचिन तेंदुलकर आ जाए तो लोग भर भर, क्यों, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, तो हमारे लिए सचिन तेंदुलकर बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा, परंतु अर्जुन के लिए, अर्जुन के सचिन तेंदुलकर इत्यादि कौन, विवस्वान, इक्ष्वाकु, वैवस्वत मनु, जब अर्जुन ने इनका नाम सुना, अच्छा आपने इनको सुना है गीता, बाप रे ये सब आपके गीता क्लास में आते थे, हाँ ये सब गीता क्लास में आते थे। तो ये कारण कि ये सब सुन के अर्जुन का जो दिलासा और पक्का किया भगवान ने। अब महाराज इक्ष्वाकु के विषय में हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि महाराज इक्ष्वाकु उन्होंने अपना देह त्याग कैसे किया। महाराज इक्ष्वाकु के गुरु वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ मुनि के साथ अपने अंतिम सांसें लेते समय महाराज इक्ष्वाकु चर्चा कर रहे थे भगवद गीता के श्लोकों की, और वो गीता जो उन्होंने परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कही हुई, आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, उस भगवद गीता के पारंपरिक ज्ञान को सुनते, उसके ऊपर चर्चा करते हुए अपने गुरु महाराज के समक्ष उन्होंने देह त्याग किया। ये है महाराज इक्ष्वाकु, ऐसे परंपरा में जो गीता का ज्ञान भगवान दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे राजऋषि, इनके परंपरा में हमें ये ज्ञान जब मिलेगा तब जाकर हमारे अंदर भी वो परिवर्तन आएगा, और हम भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हमारा देह त्याग उस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो पूरा तात्पर्य है 4.1 का, उसका निचोड़ ये है, अगर एक लाइन में 4.1, ये जो चौथा अध्याय का प्रथम श्लोक, इसका सार एक लाइन में यदि कहें, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन यह भगवद गीता का ज्ञान अविनाशी है, जो सुनता है, जो सुनाता है, जो समझता है, सबके लिए यह ज्ञान अविनाशी है। अव्ययम योगम अव्ययम। तो ये है भगवद गीता के चौथे अध्याय का प्रारंभ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब 4.2, इसमें परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, इसका महत्व। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, अगला जो श्लोक है जिसके अंदर भगवान परंपरा के विषय में बोल रहे हैं और राज ऋषियों के विषय में बोल रहे हैं। तो अगले बुधवार को एक बहुत ही विशेष सेमिनार होने वाला है, हमारे एक चौपाटी के बहुत विख्यात प्रचारक शुभ विलास प्रभु आ रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है रामायण, कैसे हमें हमारे दैनिक जीवन में शिक्षाएं प्रदान कर कर ये ग्रंथ दे रहा है, रामायण की कथा। तो 2 दिन का इनका सेमिनार होगा, अगले बुधवार और अगले गुरुवार, ये 2 दिन सेमिनार ये देने वाले हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम रामायण, डे टू डे हाउ टू लिव अवर डे टू डे लाइफ बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ रामायण। तो आप लोग इसके लिए अवश्य आइए। ये विशेष सेमिनार देने के लिए वो बंबई से यहां पर आने वाले हैं। 2 दिन का सेमिनार है, अगले बुधवार, उसका पोस्टर शायद बाहर लगा होगा, अगले बुधवार और अगले गुरुवार। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता की जय।